नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित एआई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन एआई महाकुंभ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। राधाकृष्णन ने कहा कि शुरुआत में ही एआई के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा और समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत की दिशा में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। सांसद सुरेश कश्यप ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक के माध्यम से योजना में किए गए बदलावों का स्वागत किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि मनरेगा में करीब 20 वर्षों के बाद ये सुधार हुआ है, जिससे योजना को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जाएगा।
विपक्ष बेवजह इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले नरेगा होता था उसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया, क्योंकि सितंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी 20 साल पूरे होने के ऊपर इसमें जो व्यापक सुधारों की आवश्यकता थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कि मनरेगा में जो व्यापक स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस प्रकार से फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, समय के ऊपर पेमेंट्स नहीं हो रही थी और जिस प्रकार से प्रोडक्टिविटी इस स्कीम के माध्यम से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, उसी को लेकर इसमें व्यापक सुधार अभी किए गए हैं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रमिकों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम पर एक बार फिर देश को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना एक प्रगतिशील कदम है और काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के प्रावधान को भी और मजबूत किया गया है। प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत 26 दिसंबर को बिलासपुर में महावॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस आयोजन को लेकर बिलासपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर के बाद अब बिलासपुर में ये चौथा बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे।
एंटी चिट्टा वॉकाथॉन जो है ये 4 मार्च बिलासपुर में रखा है और हमें उम्मीद है कि इसमें 15,000 से ज्यादा युवा जो है बिलासपुर के भाग लेंगे। इसका मकसद यही है कि बच्चों में जागरूकता आए और समाज के ही जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो भी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हों, ताकि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा जा सके, सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके।
भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दे को भाजपा सांसदों ने लोकसभा व राज्यसभा में बार बार मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण व रखरखाव में कोई कमी नहीं रखी है। सहजल ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि बीते मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में 50,000 मीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी स्थायी बहाली के लिए केंद्र ने 513 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा केवल किरतपुर मनाली कॉरिडोर पर ही लगभग 544 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। चंबा जिला की चुराह विधानसभा सीट को अनारक्षित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन भेजा है। लोगों का कहना है कि चुराह विधानसभा सीट पिछले 70 वर्षों से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित है, जिससे अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।